प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी न्यू साउथ वेल्स के मिड नॉर्थ कोस्ट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स के 70 सैनिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर रास्तों को साफ करने में मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एल्बनीजी ने कहा कि इन सैनिकों की मौजूदगी से बुरी तरह प्रभावित समुदायों को ज़रूरी हौसला मिलेगा। स्टेट इमरजेंसी सर्विस के अनुसार मिड नॉर्थ कोस्ट क्षेत्र के 5,000 से ज़्यादा घरों की जाँच करने के बाद 794 घरों को रहने लायक नहीं पाया गया है। विक्टोरिया में मशेटी पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों में चिंता है। अगले हफ्ते आने वाले ईद अल अधा के मौके पर मांस काटने के लिए ऐसे बड़े चाकुओं का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें डर है कि कानूनी और प्रतिबंधित चाकुओं में फ़र्क कर पाना मुश्किल हो सकता है। राज्य की लेबर सरकार विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए बुधवार 28 मई से मशेटी की बिक्री पर रोक लगा रही है और लोगों से सितंबर से इन्हें जमा कराने की उम्मीद की जा रही है। विक्टोरिया की क्षेत्रीय विकास मंत्री हैरियट सिंह ने कहा कि समुदाय की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वो चाहती हैं कि मशेटी के आयात पर भी रोक लगे। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नामक एक सहायता समूह का कहना है कि उसने गाजा में खाना बांटना शुरू कर दिया है। फरवरी से जिनीवा में आधारित अमेरिका का समर्थन प्राप्त करने वाली इस निजी संस्था ने अपने पहले 90 दिनों में करीब 30 करोड़ खाने के पैकेट बांटने का वादा किया है। गाजा में करीब 3 महीने से जारी पूरी नाकाबंदी हाल ही के दिनों में थोड़ी ढीली होने लगी है, लेकिन अब भी भुखमरी का खतरा बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियों का कहना है कि वो इस फाउंडेशन के साथ सहयोग नहीं करेंगी क्योंकि उस पर आरोप है कि वो इसराइल के साथ मिलकर काम कर रहा है और उसमें किसी भी फिलिस्तीनी की भागीदारी नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रशिया एक लंबी युद्ध की योजना बना रहा है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, जो बमबारी बढ़ाने वाली उसकी नई रणनीति का हिस्सा है। इससे संकट को सुलझाने की कोशिशों को और झटका लगा है। रोज रात के अपने वीडियो संबोधन में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्ध जल्द खत्म होने की उम्मीद कमजोर हो रही है। युगम्बे समुदाय की नेता आंटी रॉबिन विलियम्स ने सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों से आग्रह किया है कि वो रिकंसिलिएशन वीक के मौके पर इस बात पर विचार करें कि कैसे प्रथम राष्ट्र के लोगों और अन्य ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के बीच संबंधों को और मजबूत किया जा सकता है। ये सप्ताह रिकंसिलिएशन की यात्रा के 2 महत्वपूर्ण पड़ावों को याद करता है, 27 मई 1967 का सफल रेफरेंडम और 3 जून को उच्च न्यायालय का मार्बो निर्णय। इस वर्ष की थीम ब्रिजिंग नाउ टू नेक्स्ट है, जो वर्ष 2000 को याद करती है जब 2.5 लाख लोगों ने रिकंसिलिएशन के लिए सिडनी हार्बर ब्रिज को पार किया था। आंटी रॉबिन विलियम्स कहती हैं कि ऐसा समाज बनाने में हर किसी की भूमिका होती है जो एबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों, उनके इतिहास, संस्कृति और भविष्य को महत्व देता है। और अब खबर भारत से। पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने के उद्देश्य से भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों ने अपना अंतर्राष्ट्रीय दौरा शुरू कर दिया है। ये टीमें दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात करके भारत के आतंकवाद के प्रति सख्त और स्पष्ट रुख से उन्हें अवगत करा रही हैं। ये ऑल पार्टी डेलीगेशंस दक्षिण कोरिया, कुवैत, खतर सहित कई देशों का दौरा कर रहे हैं और आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपील कर रहे हैं। इन बैठकों का मुख्य केंद्र आतंकवाद के खिलाफ भारत की 0 टॉलरेंस नीति है। यह था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ।
हमसे जुड़िए जब आप चाहें, SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, टीवी चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।